नमस्कार नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, उपासना का मर्म।
नमस्कार। हाँ, ये विषय गहरा भी है और जरूरी भी।
हमारे पास उपासना का मर्म पुस्तक के कुछ अंश हैं और आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये उपासना आखिर है क्या और क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है।
बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं।
तो स्रोत की एक बुनियादी बात जो मुझे लगी वो ये है कि भाई, अकेले इंसान की जो क्षमता है वो सीमित है ना?
हाँ बिल्कुल, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता वाली बात।
सही, जैसे स्रोत उदाहरण देता है, घर में बल्ब हो, पंखा हो, वो अपने आप नहीं चलते, उन्हें बिजली घर से जुड़ना पड़ता है।
करेक्ट, एक बड़े पावर सोर्स से कनेक्शन चाहिए।
तो वैसे ही जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है, ऊंचा उठना है, तो किसी बड़ी शक्ति से जुड़ना वो जरूरी हो जाता है।
और इसी जुड़ने की प्रक्रिया को, इसी कोशिश को उपासना कहा गया है।
अच्छा,
उपासना का अगर सीधा सा मतलब देखें तो वो है पास बैठना।
पास बैठना, इंटरेस्टिंग, मतलब किसी शक्ति स्रोत के करीब होना।
एग्जैक्टली, निकटता।
ये निकटता वाली बात पर स्रोत और भी कहता है, जैसे आग के पास बैठो तो गर्मी मिलती है, बर्फ के पास ठंडक, ये तो ठीक है।
हाँ, ये तो अनुभव की बात है।
पर वो कहते हैं कि चंदन के पेड़ के पास जो मामूली झाड़ियां उगती हैं ना,
हाँ,
उनमें भी चंदन की खुशबू आ जाती है। और पारस पत्थर वाला उदाहरण,
हाँ, कि लोहे को छूकर सोना बना देता है।
तो ये सिर्फ संगति का असर नहीं है, मतलब ये तो ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण हो गया।
बिल्कुल सही पकड़ा, यही पॉइंट है। ईश्वर या उस परम शक्ति के पास होने का मतलब सिर्फ अच्छी फीलिंग नहीं है, बल्कि व्यक्ति का मूल्य बढ़ता है, उसकी जो कमियां हैं वो खूबियों में बदलने लगती हैं।
अच्छा,
इसीलिए स्रोत ईश्वर को कल्प वृक्ष कहता है, पारस कहता है, अमृत कहता है।
जिनके पास जाने से,
हाँ, जिनके सानिध्य से, उनकी निकटता से इच्छाएं पूरी होती हैं, जीवन सार्थक बनता है और आत्मा की जो असली शक्ति है उसका एहसास होता है।
वाह, इसमें वो पतंग और कठपुतली वाले उदाहरण भी बड़े अच्छे लगे मुझे।
हाँ, वो भी कनेक्शन की बात करते हैं
कि पतंग तभी ऊंची उड़ती है जब डोर से बंधी हो, डोर कटी तो गई नीचे।
और कठपुतली, वो तभी नाच दिखा पाती है जब धागे से जुड़ी हो, धागा ना हो तो वो बेजान है।
तो ये जुड़ाव, ये कनेक्शन, यही कुंजी है एक तरह से। जैसे बेल भी पेड़ का सहारा लेकर ही ऊपर चढ़ पाती है।
बिल्कुल, सहारा चाहिए, कनेक्शन चाहिए।
तो फिर सवाल ये उठता है कि इस इतने महत्वपूर्ण जुड़ाव के लिए, ईश्वर के पास बैठने के लिए पहला कदम क्या हो, कहाँ से शुरू करें?
हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है और स्रोत इसका बड़ा साफ जवाब देता है।
क्या?
अपनी सफाई, सेल्फ प्यूरिफिकेशन।
अपनी सफाई
मतलब जैसे अगर आईना मैला हो, गंदा हो, तो उसमें चेहरा साफ नहीं दिखता।
हाँ सही बात है।
या पानी गंदा हो तो उसमें परछाई नहीं दिखती। वैसे अगर हमारा मन मैला है, उसमें विकार भरे हैं, तो उसमें वो परम चेतना, वो ईश्वर कैसे झलकेगा?
अच्छा, तो पहले मन की सफाई करनी होगी।
हाँ, इसीलिए शायद हमारी परंपरा में पूजा पाठ से पहले वो पंचकर्म जैसी चीजें होती हैं, पवित्रीकरण, आचमन, प्राणायाम, न्यास।
हाँ हाँ, होते हैं।
वो सिर्फ बाहरी सफाई नहीं है, वो शरीर के साथ साथ मन, वाणी, कर्म, इंद्रियों और विचारों की, मतलब अंदर की सफाई के भी प्रतीक हैं।
समझ गए, जैसे हम रोज नहाकर शरीर का मैल साफ करते हैं,
हाँ,
वैसे ही रोज मन पर जो गंदगी जम जाती है, गुस्सा, लालच, ईर्ष्या, जिसे श्रोत कषाय कलमश कहता है,
हाँ, विकार,
उसे भी रोज धोना जरूरी है। ये हुई आत्मा की सफाई।
बिल्कुल, और यहीं पर जप या नाम स्मरण जैसी जो प्रैक्टिसेस हैं, उनका रोल समझ आता है।
अच्छा, जब,
हाँ, श्रोत कहता है कि इसे ये नहीं समझना चाहिए कि हम भगवान की खुशामत कर रहे हैं या चापलूसी कर रहे हैं।
हाँ, कई लोग ऐसा सोचते हैं।
अरे, परमात्मा को हमारी तारीफों की या रिश्वत की, फूल प्रसाद की जरूरत नहीं है।
तो फिर जप क्यों?
जप है मन को धोने का, रगड़कर चमकाने का तरीका, जैसे साबुन कपड़े का मैल काटता है, या कारीगर पत्थर को घिस घिस कर चिकना करता है, मूर्ति बनाता है, जब वो घिसाई है मन की।
वाह, ये बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है।
मतलब जप अपने लिए है, ईश्वर के लिए नहीं।
बिल्कुल,
सेल्फ इम्प्रूवमेंट का टूल है।
इसी तरह पूजा के जो दूसरे प्रतीक हैं, जैसे सूर्य को जल चढ़ाना, इसका क्या मतलब बताया है स्रोत ने?
ये भी अपने लिए ही है, आत्म शिक्षण। सूर्य को जल चढ़ाने का भाव ये है कि हम अपनी जीवन ऊर्जा, अपना जीवन रस, अपने साधन सिर्फ अपने तक ना रखें, उसे विराट सत्ता को, यानी समाज के हित में समर्पित करें, ताकि वो सबके काम आए।
अच्छा, ये तो बहुत गहरा मतलब है।
हाँ, सारे प्रतीक ऐसे ही हैं, जैसे इष्ट की स्थापना करते हैं पूजा में।
हाँ, कोई शिवजी की मूर्ति रखता है, कोई गायत्री माता की,
तो उसका अर्थ है अपने जीवन का एक ऊंचा लक्ष्य तय करना। शिव को माना तो मतलब कल्याण को लक्ष्य बनाया, गायत्री को माना तो सद्बुद्धि और शालीनता को,
और फूल चढ़ाना।
फूल चढ़ाना सिर्फ एक रस्म नहीं, वो संकल्प है कि हमारा जीवन भी फूल जैसा खिले, सुगंध फैलाए, दूसरों को खुशी दे।
और दीपक जलाना, ये तो बहुत कॉमन है।
हाँ, तो वो ईश्वर को रोशनी दिखाना नहीं है, उन्हें क्या जरूरत रोशनी की।
सही बात है।
वो प्रण है कि हम खुद एक प्रकाशवान जीवन जिएंगे, अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के उजाले की तरफ बढ़ेंगे। तमसो माँ ज्योतिर्गमय।
और नैवेद्य जो मीठा चढ़ाते हैं,
उसका प्रतीक है कि हमारे व्यवहार में मिठास आए, विनम्रता आए, कड़वाहट ना हो।
और अक्षत यानी चावल।
अक्षत मतलब जो टूटा ना हो, पूरा हो। ये प्रतीक है कि हमारी जो कमाई है, जो साधन है, उनका एक अंश हम बिना किसी कमी के पूरी श्रद्धा से श्रेष्ठ कामों में लगाएं।
ये सब तो बहुत सुंदर प्रतीक है खुद को बेहतर बनाने के तरीके, पर इसमें रुकावटें भी तो आती होंगी।
बिल्कुल आती हैं। मन कहाँ आसानी से सुधरता है।
इसी पर स्रोत में वो संत और चोर वाली कहानी है शायद।
हाँ हाँ, वही कहानी। एक संत एक चोर को कहते हैं कि चलो तुम्हें पहाड़ पर ईश्वर के दर्शन कराता हूँ, लेकिन जाते समय चोर के सिर पर चार भारी पत्थर रखवा देते हैं।
बाप रे,
चार भारी पत्थर।
हाँ।
अब जैसे जैसे वो पहाड़ पर चढ़ते हैं, चोर की हालत खराब होने लगती है, बोझ सहा नहीं जाता।
जाहिर है।
तो संत कहते हैं ठीक है, एक पत्थर फेंक दो, फिर थोड़ी देर में दूसरा, फिर तीसरा, आखिर में चौथा भी फेंक देता है।
हाँ।
फिर
तब संत उसे समझाते हैं।
हाँ।
कि देखो, जैसे ये पत्थर तुम्हारी चढ़ाई में बोझ बन रहे थे,
हाँ,
तुम्हें ऊपर पहुंचने से रोक रहे थे, वैसे ही हमारे मन में जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जलन जैसे भारी पत्थर है,
अच्छा,
ये अवगुण,
हाँ,
ये बुरे ख्याल,
हाँ,
ये आदतें, ये बोझ हैं, ये हमें ईश्वर तक, या कह लो हमारी अपनी असलियत तक, हमारी शांति तक पहुंचने से रोकते हैं।
तो इन्हें भी फेंकना होगा।
बिल्कुल, इन्हें हटाना ही आत्मशुद्धि का असली काम है, इन पत्थरों को उतारना होगा।
तो मतलब उपासना का जो पूरा निचोड़ है वो यही हुआ कि ईश्वर के करीब जाने लायक बनने के लिए।
हाँ, पहले खुद पर काम करना पड़ेगा, अंदर की सफाई करनी पड़ेगी।
एकदम सही।
जैसे हम घर में मेहमान बुलाने से पहले घर साफ करते हैं ना।
बिल्कुल।
वैसे ही अपने मन मंदिर को साफ करना है ताकि उसमें ईश्वर का स्वागत कर सके।
या जैसे खेत में बीज बोने से पहले जमीन तैयार करनी पड़ती है, जुताई, गुड़ाई, कंकड़ पत्थर निकालना।
बिल्कुल। या इमारत बनाने से पहले नींव खोदनी पड़ती है, वो मजबूत होनी चाहिए। तो ये आत्मशुद्धि ही उपासना की नींव है, वो तैयारी है जिससे उपासना सार्थक बनती है, फल देती है।
एग्जैक्टली। तो संक्षेप में अगर कहें तो उपासना का असली मर्म, उसका एसेंस, वो बाहरी कर्म कांडों में उतना नहीं है, जितना वो आंतरिक शुद्धि में है, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में है, और उस परम शक्ति के प्रति एक समर्पण भाव, एक कनेक्शन बनाने में है।
सही कहा। स्रोत आत्म परिष्कार पर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर बहुत जोर देता है।
हाँ, और इस पर शायद हम सब सोच सकते हैं, आज की जो हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी है, उसमें हमारे अपने कौन से पत्थर हैं, कौन से मानसिक बोझ हैं, शायद तनाव, चिंता, कोई बुरी आदत, कोई डर, जो हमें अपने गहरे मकसद से या अपनी भीतरी शांति से जुड़ने से रोक रहे हैं।
हाँ, ये सोचने वाली बात है।
और उन पर, उन बोझों पर ये सफाई का जो सिद्धांत है वो कैसे लागू किया जा सकता है, ये एक विचारणीय प्रश्न।